दिन भर 14 मार्च दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदर। मनोहर पर्रिकर गोवा के नए मुख्यमंत्री। सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च को विश्वास लेने के आदेश दिए, कांग्रेस नाराज।
ये तो पैसे का खेल है, आर्म ट्विस्टिंग है, डराना और धमकाना, ये सारी चीजें गवर्नर के ओर से सरकार कर रही है।
जिक्र होगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राजनीतिक सरगर्मियों का भी। बताएंगे किस तरह उड़ीसा में नए चूल्हे के प्रयोग ने कर दी है लोगों की जिंदगी आसान।
पहले गांव में जब ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ कि आप जो मिट्टी के चूल्हे यूज कर रहे हो उसमें बहुत दिक्कतें होता है, एक नया चूल्हे जो कम धुएं वाला है तो उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। मनोहर पर्रिकर गोवा के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने उन्हें शपथ दिलाई। पर्रिकर के साथ 10 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को गोवा की 40 में से 13 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस को 17 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन बीजेपी ने छोटे दलों के समर्थन के साथ बहुमत का दावा किया था। राज्यपाल ने पर्रिकर को सरकार बनाने का न्योता दिया, जिसे कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पर्रिकर को 16 मार्च को बहुमत साबित करने को कहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान ने अपना तीखा हमला जारी रखते हुए कहा है कि नीदरलैंड्स के लोगों के हाथ खून से रंगे हैं। उन्होंने जर्मनी की भी आलोचना की है और कहा है कि जर्मनी का बर्ताव भी नीदरलैंड्स से अलग नहीं है। तुर्की अपने मंत्रियों को रैलियों की इजाज़त नहीं देने को लेकर इन देशों से नाराज़ है। तुर्की में संविधान संशोधन को लेकर जनमत संग्रह होना है। देश से बाहर रहने वाले तुर्क लोगों का समर्थन जुटाने के लिए तुर्की के मंत्री अन्य देशों का दौरा कर रहे हैं। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन में कंपनियां अपने कर्मचारियों के धार्मिक प्रतीकों को पहनने पर रोक लगा सकती हैं। दो महिलाओं को हिजाब हटाने से इनकार करने पर नौकरी से निकाले जाने के मामले में ईयू की सबसे बड़ी कोर्ट ने फ्रांस और बेल्जियम की कोर्ट के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस फैसले को लेकर कानूनी विशेषज्ञ जोशुआ रोजनबर्ग का कहना है।
The court said that although the ban was not direct discrimination, it might amount to indirect.
कोर्ट का कहना है कि यह पाबंदी सीधे तौर पर भेदभाव नहीं है, लेकिन अगर यह तय होता है कि इससे किसी खास धर्म को मानने वालों को असुविधा होती है तो संभव है कि इससे अप्रत्यक्ष तौर पर भेदभाव हो। भेदभाव को उस स्थिति में न्याय संगत ठहराया जा सकता है जबकि इसका कोई वैध उद्देश्य हो। उदाहरण के लिए दार्शनिक निष्पक्षता और राजनीतिक धार्मिक निष्पक्षता की स्थिति में, बशर्ते इसे लागू करने का तरीका संतुलित हो। तीसरी और अहम बात यह है कि कोई नियोक्ता सिर्फ ये नहीं कह सकता कि मेरे ग्राहक किसी महिला को हिजाब पहने नहीं देखना चाहते। ये थे कानून के जानकार जोशुआ रोजनबर्ग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सोमालिया से मिली रिपोर्टों के मुताबिक सोमाली लुटेरों ने तटीय क्षेत्र से कथित तौर पर एक तेल टैंकर पर कब्जा कर लिया है। अगर इस खबर की पुष्टि होती है तो ये 5 साल में बड़े व्यावसायिक पोत को जब्त करने की पहली घटना होगी। सोमवार शाम को इस जहाज से सिग्नल भेजे गए थे। जहाज से जानकारी दी गई थी कि एक तेज गति वाली नाव उसकी तरफ बढ़ रही है। ये जहाज जिबूती से सोमालिया की राजधानी मोगादिशु की तरफ जा रहा था। मलेशिया का कहना है कि वो जल्द ही उत्तर कोरिया के 50 ऐसे नागरिकों को निर्वासित करेगा जो वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी रुके हुए हैं। ये कदम उत्तर कोरिया के लोगों के मलेशिया छोड़ने पर लगी पाबंदी के बावजूद उठाया जाएगा। ये प्रतिबंध बीते हफ्ते लगाया गया था। उत्तर कोरिया ने भी मलेशिया के नागरिकों के देश छोड़ने पर रोक लगाई हुई है। उत्तर कोरिया के नेता के सौतेले भाई किम जोंग नम की मौत के बाद से दोनों देशों के संबंधों में तनाव है। मलेशिया के उप प्रधानमंत्री अहमद जाहिद हमीदी ने कहा,
kita akan menghantar pekerja-pekerja DPRK yang berada di Sarawak yang telah
हम वीजा खत्म होने के बाद भी रुके उत्तर कोरिया के श्रमिकों को वापस भेजेंगे। वीजा अवधि खत्म होने के बाद मुकदमे की कार्रवाई की जा रही है। नियमों के तहत उन्हें वापस भेजा जा रहा है। ये थे मलेशिया के उप प्रधानमंत्री के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया के होम शहर के सरकार के नियंत्रण वाले हिस्से में एक बम धमाके के जरिए यात्री बस को निशाना बनाया गया। सीरिया के सरकारी टेलीविजन का कहना है कि धमाके में एक व्यक्ति के मारे जाने और 2 लोगों के घायल होने की खबर है। बीते महीने चरमपंथी संगठन तहरीर अल शाम ने सिटी सेंटर में हुए धमाके की जिम्मेदारी ली थी। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। मनोहर पर्रिकर गोवा के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। आज राजधानी पंजिम में राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। उनके साथ 10 मंत्रियों ने भी शपथ ली। कांग्रेस ने राज्यपाल के इस फैसले को कल शाम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आज अदालत ने पर्रिकर सरकार के शपथ समारोह पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन उन्हें 16 मार्च को सुबह 11 बजे विश्वास मत हासिल करने का आदेश दिया है। सुनिए जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
मनोहर पर्रिकर शपथ लेते हुए, इस तरह पर्रिकर गोवा के चौथी बार मुख्यमंत्री बने। श्री पर्रिकर ने गोवा विधानसभा चुनाव के नतीजे बाहर आने के बाद रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा को केवल 13 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस को 18। कांग्रेसी नेता कहते हैं उनके साथ नाइंसाफी हुई है, सरकार बनाने का निमंत्रण उन्हें ही मिलना चाहिए था। पार्टी के एक नेता मल्लिकार्जुन खड़से ने कहा, इसके पीछे ताकत और पैसे का खेल है।
ये तो पैसे का खेल है, आर्म ट्विस्टिंग है, डराना और धमकाना, ये सारी चीजें गवर्नर के ओर से उनके तरफ से सरकार कर रही है, उनको इस्तेमाल कर रही है।
40 सीटों वाले विधानसभा में बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। चुनाव से पहले सरकार इसी की थी। इसके मुख्यमंत्री समेत उनके कई साथी चुनाव हार गए थे। कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनी। सरकार बनाने के लिए 21 विधायकों की जरूरत होती है। बीजेपी ने 2 छोटी पार्टियों और आजाद उम्मीदवारों की मदद से 22 विधायकों के समर्थन का दावा किया। राज्यपाल ने भाजपा को सरकार बनाने की दावत दी, लेकिन कांग्रेस ने गवर्नर के इस फैसले को कल शाम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। आज अदालत ने पर्रिकर सरकार के शपथ समारोह पर कोई पाबंदी आयद नहीं की, लेकिन उन्हें 16 मार्च को सुबह 11 बजे विश्वास मत हासिल करने का आदेश दिया, जैसा कि भाजपा प्रवक्ता नलिन कोहली ने पत्रकारों से कहा।
आर्ग्यूमेंट्स के दौरान कांग्रेस पार्टी ने या जो उनका जो याचिका आई थी उसमें वो आर्ग्यू करने का प्रयास कर रहे थे कि उनके पास संख्या है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो रिकॉर्ड्स पे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो ये रिकॉर्ड लाया गया कि गवर्नर के सामने सपोर्ट और एविडेंस प्रस्तुत किया गया था 21 का, इसका अंततः जाकर अंत में तो फ्लो टेस्ट ही तय करेगा। फ्लो टेस्ट 16 तारीख को होगा, 11 बजे असेंबली बुलाई जाएगी और जो भी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है वो 14 तारीख तक वो कंप्लीट की जाएगी।
कांग्रेस पार्टी ने अदालत को बताया कि उसके पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या है। पार्टी ने सोमवार की शाम को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। गोवा कांग्रेस विधायक दल के नेता चंद्रकांत कवलेकर की ओर से दायर इस याचिका में मांग की गई थी कि पर्रिकर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर रोक लगा दी जाए। दूसरी तरफ भाजपा ने कहा कि कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा नहीं पेश किया, उसके पास 2 दिनों का समय था, लेकिन उनके खेमे से कोई आवाज़ नहीं आई, इसीलिए भाजपा आगे बढ़ी और केवल 13 सीटें हासिल करने के बावजूद 22 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया।
ये थी सुबैर अहमद की रिपोर्ट। क्या कांग्रेस को 5 राज्यों में हुए विधानसभा के चुनावों में क्षेत्रीय नेताओं की अनदेखी महंगी पड़ी है? विधानसभा के चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं तो कुछ पार्टी के सलाहकारों पर। हालांकि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोपों को खारिज करते हुए 3 राज्यों जैसे पंजाब, मणिपुर और गोवा में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन का श्रेय क्षेत्रीय नेताओं को दिया है। एक रिपोर्ट के साथ सलमान रावी।
कांग्रेस पर नजर रखने वालों का कहना है कि आला कमान का चलन जब से कांग्रेस में आया तब से धीरे धीरे क्षेत्रीय नेताओं की पार्टी में अहमियत खत्म होनी शुरू हो गई। जानकार मानते हैं कि ये सिलसिला राजीव गांधी से भी पहले से ही शुरू हो गया। मंगलवार को जब राहुल गांधी लोकसभा से बाहर निकले तो वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने उनसे क्षेत्रीय नेताओं की अनदेखी पर सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि पंजाब, मणिपुर और गोवा के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा।
इफ यू लुक एट आवर उत्तराखंड इलेक्शन, यू लुक एट पंजाब, हु इज रनिंग दीज इलेक्शंस? इट्स द रीजनल लीडर्स हु आर रनिंग द इलेक्शंस। दे आर द पीपल हु फाइट द इलेक्शन एंड दे हैव बीन सक्सेसफुल इन पंजाब, दे हैव बीन सक्सेसफुल इन गोवा, दे हैव बीन सक्सेसफुल इन मणिपुर। बट एज फार एज द कांग्रेस पार्टी इज कंसर्न, वी डू नीड टू मेक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस।
राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा कि विधानसभा के चुनाव में आखिर कौन चुनाव लड़ रहा था। वो कह रहे थे कि ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांग्रेस की हार हुई, मगर वो तो क्षेत्रीय नेता ही थे जो इन प्रदेशों में चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव करवा रहे थे। उन्होंने ये जरूर स्वीकार किया कि संगठन के ढांचे में बदलाव करने की आवश्यकता है। वरिष्ठ पत्रकार रशीद खिदवाई कहते हैं कि आजादी के बाद कांग्रेस में कुछ ऐसा चलन था कि शायद ही कोई प्रदेश हो जहां से तीन या चार कद्दावर नेता संगठन में ना हो।
उस वक्त आजादी के बहुत सारे कांग्रेस के बड़े बड़े कद्दावर लीडर थे, तकरीबन कोई ऐसा प्रदेश नहीं था कि जहां के ऊपर पांच छह सात अच्छे कद्दावर लीडर ना हो। इंदिरा गांधी का सिलसिला शुरू हुआ तो इंदिरा गांधी से कुछ लीडर्स की उनकी टसल शुरू हुई। खुद इंदिरा गांधी कामयाब थी, जैसे भी नरेंद्र मोदी कामयाब है, बार बार इलेक्शन जीतती थी, तो उसमें उन्होंने लोगों को हाशिए पर करना शुरू किया। तो उस तरीके से स्टेट लीडरशिप में जो बड़े लीडर थे उनका जैसे कहते हैं ना कट्टू साइज के, उनका जो कद था उसको कम करने की कोशिश की गई। और राजीव गांधी के आते वक्त तो ये बहुत एक आम सी बात हो गई।
वही राजनीतिक मामलों की जानकार नीरजा चौधरी कहती हैं कि कांग्रेस में तो पहले से ही आला कमान का कल्चर आ गया था और कुछ उसी दिशा में अब भारतीय जनता पार्टी भी चल रही है।
जो क्षेत्रीय नेता है उनको आज कांग्रेस को बढ़ाना पड़ेगा। आगे एक मायने में अगर देखिए आप, अगर कांग्रेस को काउंटर करना है उसको बिल्कुल ही अलग रास्ता पकड़ना पड़ेगा, वो है फेडरल पार्टी, जहाँ के आपके क्षेत्रीय जो लीडर्स हैं उनको बढ़ावा मिलना पड़ेगा, ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, डिसीजन मेकिंग में ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। जो पहले का कल्चर रहा हाई कमांड का उसको तो जाना पड़ेगा। तो ये जहाँ जहाँ स्ट्रॉन्ग लीडर है, अब मणिपुर में भी बोगी सिंह 15 साल पावर में रहे पर इतनी अच्छी टक्कर दी क्योंकि स्ट्रॉन्ग लीडर माने जाते हैं
जी।
तो उसी तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह, इनको हर स्टेट में चेहरा ढूंढना पड़ेगा कौन पॉपुलर है, फिर उसको फ्रीडम देनी पड़ेगी पार्टी को शेप करने की। और ये हाईकमांड से हर चीज क्लियर हो, ये चीज आज के संदर्भ में कांग्रेस के, बीजेपी के संदर्भ में बिल्कुल वही चीज चलेगी जो एक जमाने में कांग्रेस की चलती थी हाईकमांड।
मगर कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल नहीं मानते कि कांग्रेस में क्षेत्रीय या पुराने नेताओं की किसी तरह भी अनदेखी की जा रही है।
ये शिकायत नहीं कर सकते, जहाँ तक फौजेदार साहब का ताल्लुक है, जाहिर है कश्मीर के अंदर अगर उन्हें साइडलाइन करते तो आप ये सवाल उठा सकते थे। जनार्दन द्विवेदी जी साहब जो है उनको कहीं हमने साइडलाइन नहीं किया, वो आज भी जनरल सेक्रेटरी है। आज भी जो कांग्रेस के जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जो क्षेत्र उनका है उसके अंदर उनको पूरी आजादी दी गई है, वही सब ऐलान करते हैं। तो ये कहना कि हमने रीजनल लीडर्स को कहीं नजरअंदाज किया, ये कांग्रेस को पर तोहमत लगाने के मजदाक है, उसके बिल्कुल बराबर।
राहुल गांधी और मीम अफजल अपने बचाव में चाहे पंजाब, मणिपुर और गोवा का उदाहरण दे रहे हो, मगर ये भी चर्चा है कि पंजाब में विधानसभा के चुनावों से पहले कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह को दरकिनार करना चाहती थी। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी में विधायक दल के नेता यानी मुख्यमंत्री की तलाश तेज हो गई है। हालांकि इस मुद्दे पर कयास चुनाव से पहले ही लग रहे थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये चर्चा कुछ ज्यादा ही गर्म है। उधर चुनाव में ईवीएम मशीनों में कथित धांधली का मामला अब बीएसपी के अलावा दूसरे राजनीतिक दलों के लिए भी मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी की बैठकें हालांकि दिल्ली में हो रही हैं, लेकिन लखनऊ में राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में फिलहाल एक ही मुद्दा है, मुख्यमंत्री कौन होगा। पार्टी की ओर से तो अब कोई नेता कुछ भी नहीं कह रहा है। एक दो दिन पहले तक बैठकों में तय करने की बात करने वाले प्रवक्ता भी अब आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, चाहे उन्हें मालूम न हो या फिर इस मुद्दे पर उन्हें बोलने से मना किया गया हो। लेकिन चर्चा में जो नाम चल रहे हैं उन पर भी लोगों की अलग अलग राय है। लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान कहते हैं,
ये अगर नॉर्मल बीजेपी होती तो जर्नलिस्ट कोई भी गेस करके बता देता, ये बीजेपी नहीं है, ये मोदी है। और मोदी ऐसा सुना है कि उसमें बारे में सोचना कि दिमाग कहाँ चल रहा है बड़ा नामुमकिन सा है। फिर भी जो जो इस तरीके के नाम चल रहे हैं जिन लोगों के, जैसे राजनाथ सिंह, दिनेश शर्मा, मनोज सिन्हा, बीच में संतोष गंगवार का भी नाम आया था, तो अब चॉइस कई फैक्टर्स हैं। देखिए 2019 के चुनाव को लेकर के मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन लिया जाएगा, तो इसलिए ऐसा शख्स लाएंगे। सबसे पहले तो उसकी इमेज क्लीन होनी चाहिए, तेज भी होना चाहिए, और उसके अलावा वो रिमोट से चलने के लिए तैयार भी होना चाहिए।
वैसे बीजेपी में इस पद के लिए जिन प्रमुख नामों की चर्चा चल रही है उनमें पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लखनऊ के मेयर डॉक्टर दिनेश शर्मा का भी नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर दिनेश शर्मा न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के बेहद करीबी बताए जाते हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के भी पसंदीदा हैं। शरद प्रधान कहते हैं,
ये इलेक्शन से पहले से भी दिनेश शर्मा की बात चलती थी कि जब इलेक्शन के जब शुरू भी नहीं हुआ था तब भी कि भाई यही सबसे सूटेबल कैंडिडेट है, और दिनेश शर्मा को मोदी का विश्वास भी प्राप्त है। मेरा ख्याल अमित शाह भी उन्हें पसंद करते हैं, गुजरात के इंचार्ज बनाए गए थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पार्टी के, ब्राह्मण फेस हैं, तो आइडियली तो वो सबसे अच्छी चॉइस वही होंगे। पर अब ये तो वैसे मैंने कहा ना कि मोदी हैं, तो जो उनका विम्स को सूट करेगा उसको रखेंगे।
भारी बहुमत मिलने के बाद बीजेपी में जहां जश्न मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नामों पर चर्चाएं चल रही हैं, वहीं विपक्षी दलों में हार के कारणों पर चर्चाएं जारी हैं। ईवीएम मशीनों से कथित छेड़छाड़ के मामले पर अब बीएसपी के अलावा दूसरे राजनीतिक दलों में भी गंभीर चर्चाएं हो रही हैं। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने जहां ट्वीट करके इस पर सवाल उठाए हैं, वहीं समाजवादी पार्टी भी इसे राजनीतिक रूप देने की तैयारी कर रही है। पार्टी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी कहते हैं,
मुख्यमंत्री जी ने तो उनको सपोर्ट की, कहा था भाई पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ये सवाल उठा रही है तो उसका गंभीरता से विचार होना चाहिए, उसकी जांच होना चाहिए। और आज भी अखिलेश जी से सैकड़ों कार्यकर्ता है अलग अलग जिलों के, वो भी सब इस तरह की बात बता रहे थे। यहाँ लखनऊ में जनशुभ ट्रस्ट में अखिलेश जी दो घंटा थे, तो वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता और वहाँ के जो पराजित उम्मीदवार रहे हैं वो सब इस तरह की बात बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई सब तथ्य आप इकट्ठा करो, क्या क्या सच्चाई है इसमें, तो ये अभी तो ये स्थिति है।
बहरहाल लोगों की निगाहें अब नई सरकार पर ही हैं। जानकारों का कहना है कि 2-3 दिन में होने वाली विधायक दल की बैठक के बाद ही इस पर से पर्दा उठ सकता है, तब तक तमाम नामों पर कयास ही लगते रहेंगे। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी को मुख्यमंत्री का नाम तय करने में पसीना बहाना पड़ रहा है। आधा दर्जनों नामों पर अटकलें हैं, लेकिन किसी एक नाम पर मोहर लगने के लिए दिल्ली में आलाकमान के फैसले का इंतजार है। उधर बुरी तरह हारी कांग्रेस के घावों पर उसके ही नेता नमक छिड़क रहे हैं, चुनाव प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं और हरीश रावत की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। देहरादून से शिव जोशी की रिपोर्ट।
जीत की होली और जश्न जुलूस के बाद बीजेपी में अब मुख्यमंत्री को लेकर इंतजार तो है ही, खेमेबंदी भी होने लगी है। मुख्यमंत्री पद के दावेदार 1, 2 या 3 नहीं, कम से कम 6 से ज्यादा हैं, और आलाकमान के सामने मुश्किल ये है कि इनमें से आखिर कौन सा नाम सर्वमान्य और निर्विवाद होगा और 5 साल निष्कंटक सरकार चलाते रह पाएगा। उत्तराखंड में कोई एक नाम तय करने से पहले जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों के अलावा प्रशासनिक अनुभव को भी देखा जाएगा। फिलहाल तो बीजेपी नेता इस सवाल से बच रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के विकास के डबल इंजन के नारे को ही दोहरा रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट,
ये सरकार आ गई हमारी, अब वो मुख्यमंत्री बनने के बाद कैबिनेट का गठन होने के बाद बहुत तेजी से काम होगा, अवरुद्ध काम आगे बढ़ेंगे, चाहे आपदा का क्षेत्र हो, कनेक्टिविटी हो, बिजली का काम हो, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, अध्यापक नहीं है स्कूलों में, ये सारी चीज़ों को आगे ले जाने का काम हम लोग बहुत तेजी से करेंगे।
बीजेपी के दावेदारों में सतपाल महाराज, भगत सिंह कोश्यारी, रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र रावत, अनिल बलूनी, अजय भट्ट के अलावा प्रकाश पंत का नाम भी शामिल है। सतपाल करीब 3 साल पहले बीजेपी में आए हैं, कोश्यारी और निशंक पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, त्रिवेंद्र रावत राष्ट्रीय सचिव हैं और पूर्व मंत्री रहे हैं, अनिल बलूनी राष्ट्रीय प्रवक्ताओं में से एक हैं, प्रकाश पंत विधानसभा स्पीकर रह चुके हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अजय भट्ट भी कतार में हैं लेकिन अपना चुनाव हार चुके हैं। एक बार फिर अजय भट्ट,
अध्यक्ष में मुझे 1 साल का समय मिला और मैंने बहुत तेज बैटिंग करनी चाहिए और रन भी तेज बनाने चाहे, तो उस तेज बैटिंग में और रन बनाने में मैं अपनी विकेट नहीं बजा पाया।
उधर कांग्रेस में हार को लेकर आत्ममंथन का दौर तो न जाने कब शुरू होगा, लेकिन आरोपों का दौर चल पड़ा है। मुख्यमंत्री हरीश रावत दो दो सीटों से हारे हैं और खासे व्यथित हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय भी हारे और उन्होंने इशारों इशारों में चुनाव प्रबंधन और संगठन की अनदेखी का मुद्दा उठा दिया।
माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों हार जाएं, ये किसी भी दल के लिए अच्छा थोड़ी है। संगठन तो अपनी जगह मजबूत खड़ा था, अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि संगठन से आप कितना काम लेते हैं, क्योंकि हमने पिछले 2.5 साल में ग्राम कांग्रेस से लेकर के और प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक एक सशक्त संगठन खड़ा किया। आपके पास घोड़ा है और घोड़े से आप काम ही नहीं लेंगे, ये तो घोड़सवार की वो है, नाकाबिलियत है ये।
बीजेपी में मुख्यमंत्री उत्तराखंड से ही होगा या कोई पैराशूट उम्मीदवार होगा, इस पर भी अटकलें जारी हैं। स्थिति जो भी बने, लेकिन ये तय है कि भावी मुख्यमंत्री की राह यहाँ आसान नहीं, क्योंकि उत्तराखंड की सत्ता राजनीति का एक कुख्यात पहलू ये रहा है कि यहाँ नवंबर 2000 की अंतरिम सरकार से लेकर अब तक सिर्फ एनडी तिवारी को छोड़कर कोई भी मुख्यमंत्री 2 साल से ज्यादा कुर्सी पर टिक नहीं पाया। अंतरिम सरकार में बीजेपी के नित्यानंद स्वामी और भगत सिंह कोश्यारी सीएम बने। 2002 में चुनाव हुआ तो तिवारी किसी तरह 5 साल खींच ले गए। 2007 में बीजेपी आई तो पहले बीसी खंडूरी, फिर निशंक और फिर खंडूरी सीएम बने। 2012 में कांग्रेस आई तो पहले विजय भोगुणा, फिर हरीश रावत आए। इस तरह 70 विधानसभा सीटों वाला ये छोटा सा राज्य स्थिर सरकारों और टिकाऊ विकास के लिए तरसता ही रहा है। शिव जोशी, बीबीसी, देहरादून।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। दुनिया की लगभग आधी आबादी आज भी घरों के भीतर पारंपरिक चूल्हों पर खाना पकाती है, जिसमें ईंधन के तौर पर लकड़ी, कोयले या गोबर का प्रयोग होता है। भारत में करीब 50 करोड़ लोग इन्हीं चूल्हों का प्रयोग करते हैं, जिसके धुएं से बीमारियों और मौत की संख्या चिंताजनक है। लेकिन ओडिशा राज्य की एक जनजाति इन दिनों ऐसे ईंधन से खाना भी ज्यादा बना रही है और स्वस्थ भी होती जा रही है। वजह है नए किस्म के आधुनिक चूल्हों का प्रयोग। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ओडिशा के नोतरपल्ली गांव होकर लौटे हैं, उनकी ये खास रिपोर्ट।
तपते सूरज की गर्मी में एक दुबला पतला शख्स कंधों पर लकड़ी की टहनियों का ढेर उठाए घने जंगलों से बाहर निकल रहा है। पिछले 20 वर्षों से टीबी यानी तपेदिक की बीमारी झेल रहे प्रकाश जानी इस बात से नाउमीद हो चुके थे कि उनका मर्ज कभी दूर हो सकेगा। अब प्रकाश की आंखों में चमक है।
20 सालों से टीबी का मरीज हूँ, घरों में धुएं से बच ही नहीं सकते थे, लेकिन अब चीजें ठीक लग रही है।
अस्पतालों के चक्कर कम हो गए हैं और डॉक्टरों ने प्रकाश को बताया है कि इसमें बड़ा असर उनके घर में कम हुए धुएं का है। घरों के भीतर धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण के चलते टीबी, ब्रोंकाइटिस और लंग कैंसर की बीमारियां आम रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा था कि घरेलू वायु प्रदूषण के चलते भारत में हर साल करीब 15 लाख मौतें होती हैं। लेकिन प्रकाश जानी के गाँव नोतरपल्ली में चीजें बदल रही हैं। कोंद जनजाति वाले सभी 34 परिवारों में अब खाना बनने के दौरान धुआं भी कम निकल रहा है और ईंधन भी कम इस्तेमाल हो रहा है। करीब एक वर्ष पहले इन्होंने पर्यावरण के अनुकूल कहे जाने वाले चूल्हों का प्रयोग शुरू किया था, जिसके लिए नेक्स्टलीफ एनालिटिक्स जैसे कई और गैर सरकारी संगठन आगे आए थे। कम ईंधन में ज्यादा खाना बनाने वाले इन नए किस्म के चूल्हों का निर्माण भारत में ही हो रहा है। नेक्स्टलीफ एनालिटिक्स की प्रोग्राम डायरेक्टर तारा रामनाथन बताती हैं।
मार्केट प्रणाली वाली इस पहल से महिलाएं न सिर्फ कमा रही हैं, बल्कि नए चूल्हों की लागत भी चुका रही हैं और जिंदगियां भी बचा रही हैं। उन्हें खुशी इस बात की है कि उनकी इस पहल का श्रेय कोई दूसरा नहीं ले सकता।
घने जंगलों के बीच नयागढ़ जिले के नोतरपल्ली गांव में इस पहल के लिए पापड़ भी कम नहीं बेलने पड़े। ओडिशा में पर्यावरण संबंधी कई पहलों पर काम कर चुके गोविंद दलाई सबसे पहले इन नए चूल्हों के साथ यहां तक पहुंचे थे।
पहले गांव में जब ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ कि आप जो चूल्हे मिट्टी के चूल्हे यूज कर रहे हो उसमें बहुत दिक्कतें होता है, एक नया चूल्हे जो उनको कम धुएं वाला है, तो उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा कम्युनिटी में प्रॉब्लम तो था। वो कोई भी नया टेक्नोलॉजी वो थोड़ा सस्पिशन के साथ उसको देखते हैं कि ये काम करेगा नहीं करेगा।
दोपहर के 2 बज चुके हैं। प्रकाश जानी की पड़ोसी रंभा प्रधान अपनी झोपड़ी के चबूतरे पर पोते के साथ खुशी से खेल रही हैं। झोपड़ी के भीतर की छत और दीवारों पर वर्षों बनाए गए खाने से निकले काले घने धुएं की छाप है।
पहले तो पुरुष हम पर हंसते थे, बाद में उन्होंने समझा कि इनमें ईंधन कम लगता है तो जंगलों में लकड़ी भी कम काटनी पड़ेगी। अब पैसे तो मिलते ही हैं और पुरुष कभी कभी खाना भी बनाते हैं।
खाना बनाने के तरीके में बदलाव, चेंज और खाने के जायके से कॉम्प्रोमाइज शुरुआत में इन लोगों को बिल्कुल नागवार गुजरा था, लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात से खुश है कि इनके अपने चाहने वालों की सेहत पहले से कहीं बेहतर है। इस गांव के डॉक्टर ने भी हमें बताया कि कैसे नए किस्म के कम प्रदूषण करने वाले इन चूल्हों के चलते नवजात शिशुओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी की सेहत में बेहतरी दिखी है। इन चूल्हों की खास बात यह है कि इनके प्रयोग को सेंसर के जरिए मॉनिटर किया जाता है और सारा डेटा किसी भी इंटरनेट वाले कंप्यूटर, मोबाइल या टैबलेट पर दुनिया के किसी भी कोने में देखा जा सकता है। हालांकि ईंधन अभी भी वही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन गांव वाले इस बात से खुश हैं कि हर महीने अगर वे 100 घंटे इन नए चूल्हों पर खाना बनाते हैं तो इस प्रोग्राम को चलाने वाले गैर लाभकारी संगठनों से उन्हें हर महीने 180 रुपए भी मिलते हैं। इन पैसों से वे धीरे धीरे चूल्हों की कीमत भी वापस चुका देते हैं। तो क्या घरों के भीतर वायु प्रदूषण के कहर से पूरी तरह निजात दिला सकेंगे ये नए चूल्हे? पर्यावरण मामलों की संस्था टेरी की बिक्सना गिल ने बताया,
Rather than taking a larger leap, it's taking a smaller step towards a better cooking solution.
मैं ये तो नहीं कह सकती कि ये चूल्हे आखिरी उपाय हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कम ईंधन प्रयोग करने वाले इस तरह के चूल्हों ने वायु प्रदूषण कम करने की तरफ बड़ी पहल तो की है। जैसे जैसे दूसरे क्षेत्रों में इनका प्रयोग बढ़ेगा, ज्यादा फर्क दिखेगा।
एक तरफ जहां इस तकनीक को दूसरे क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने की शुरुआत हो रही है, ओडिशा के नोतरपल्ली गांव वाले इसके फायदों पर बात करते नहीं थकते। शाम हो चली है और चलने का समय है, लेकिन मुर्गी के चूजों के पीछे भागते इन बच्चों की तस्वीर ले लेता हूं, घर में दिखाऊंगा। नितिन श्रीवास्तव, BBC, नोतरपल्ली, ओडिशा।
और अब एक नजर खेल समाचारों पर।
BBC खेल समाचार के साथ मैं हूँ वैभव दीवान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तेज गेंदबाज मोहम्मद इरफान को निलंबित कर दिया है और उन्हें 14 दिन में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान सुपर लीग में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल का साया रहा था और कुछ खिलाड़ियों पर इसमें शामिल होने के आरोप लगे थे। मोहम्मद इरफान सोमवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB के एंटी करप्शन यूनिट के सामने पेश हुए थे और अपना बयान दर्ज किया था। कराची से BBC संवाददाता अब्दुल शकूर के अनुसार मोहम्मद इरफान पर आरोप है कि उन्होंने संदिग्ध व्यक्तियों से अपने कथित संपर्कों के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भ्रष्टाचार निरोधी इकाई को सूचित नहीं किया था। मोहम्मद इरफान ने पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड्स का प्रतिनिधित्व किया था। वहीं कल से कोलंबो में शुरू हो जाएगा श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच। पहले टेस्ट मैच में जीत दिलाने के बाद और शानदार परफॉर्मेंस के बाद श्रीलंका टीम के मौजूदा कप्तान 38 वर्षीय रंगना हेरत ने एक कामयाबी भी अपने नाम दर्ज की, जो थी बाहिने हाथ के स्पिनर द्वारा सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड। उन्होंने न्यूजीलैंड के स्पिनर डेनियल विटोरी के 363 विकेटों के रिकॉर्ड को तोड़ा और कहा,
इट इज अ गुड अचीवमेंट। So, as a left-hand spinner,
ये एक अच्छी उपलब्धि है दाहिने हाथ के स्पिनर की हैसियत से। मैं टीम के लिए आक्रामक गेंदबाजी करता हूं और मैं काफी खुश हूं कि मैं इस शैली की गेंदबाजी कर सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया हूं।
रंगना हेरत का अगला टारगेट है 400 टेस्ट विकेट लेना। फिलहाल श्रीलंका बांग्लादेश के बीच चल रही 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में श्रीलंका 1-0 से आगे है। दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा कल। BBC खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। मनोहर पर्रिकर ने आज गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 16 मार्च को बहुमत साबित करने को कहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान ने अपना तीखा हमला जारी रखते हुए कहा है कि नीदरलैंड्स के लोगों के हाथ खून से रंगे हैं। उन्होंने जर्मनी की भी आलोचना की है। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन में कंपनियां अपने कर्मचारियों के धार्मिक प्रतीकों को पहनने पर रोक लगा सकती हैं। सोमालिया से मिली रिपोर्टों के मुताबिक सोमाली लुटेरों ने तटीय क्षेत्र से कथित तौर पर एक तेल के टैंकर पर कब्जा कर लिया है। मलेशिया का कहना है कि वो जल्दी ही उत्तर कोरिया के 50 ऐसे नागरिकों को निर्वासित करेगा जो वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी रुके हुए हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। रेहान फजल को सभी साथियों से के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।